जन से जुड़ा कोई न कोई संस्मरण अवश्य होगा। गुरुजी माताजी से परिचय।
वे बताते हैं कि 1960 में मैं पिताजी के साथ मथुरा गया, तब मैं पहली बार माताजी से मिला था।
उस समय गुरुजी अज्ञातवास में थे। उस समय तक मैं गुरुजी का साहित्य पढ़ने लगा था और उनसे बहुत प्रभावित था। मैंने माताजी के चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुजी कैसे लिखते हैं? माताजी बोली, बहुत तेज लिखते हैं और कलम उठाते ही नहीं। मैंने पूछा, क्या वे भी मुझे आपकी ही तरह प्यार करेंगे? माताजी बोली, मुझसे भी अधिक। फिर माताजी ने मुझे गायत्री मंत्र सुनाया, अखंड दीपक दिखाया और कहा, खाना खाओ। पिताजी ने कहा, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, खाना वहीं खाएंगे। माताजी ने बड़े अधिकार से कहा, खाना रिश्तेदार के घर नहीं, अपने घर खाना चाहिए। फिर हम लोगों ने वहीं खाना भी खाया। यह थी मेरी माताजी से पहली मुलाकात और गायत्री परिवार में आगमन। द 14th of June 1961 को मैं पहली बार गुरुजी से मिला।
वह दिन मुझे आज भी याद है। हम 10-12 लोग खाना खा रहे थे।
माताजी ने गुरुजी से कुछ कहा। गुरुजी हमारे पास आए और बोले, अमल कुमार कौन है? मैं घबरा कर खड़ा हो गया। गुरुजी बोले, बैठो बैठो, खाना खाओ, खाकर तपोभूमि में मेरी प्रतीक्षा करना। मैं पूजा करके आता हूँ, तुमसे बहुत बातें करनी है। मुझे खुशी, आश्चर्य और उत्कंठा एक साथ होने लगी।
उस दिन गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सी बातें की,
साधना संबंधी, भविष्य संबंधी।
हम साथ साथ घूमते रहे, कभी रुकते कभी चलते हुए गुरुजी बोलते रहे, मैं सुनता रहा। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया और मैं उनका हो गया।
द 27th of July 1961 गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने गुरुजी से दीक्षा ली। मैं जब नया नया जुड़ा था तब गुरुजी को बड़ी बारीकी से देखता था।
उनका साहित्य भी खूब पढ़ता था और जांचता रहता था कि जो कुछ वे लिखते हैं सचमुच अपनाते भी हैं।
मैंने देखा गुरुजी कभी चमड़ा उपयोग नहीं करते थे,
केवल जूते में ही नहीं, होल्डॉल के बेल्ट में भी नहीं, रेल में कभी धक्का देकर नहीं चढ़ते थे।
सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति यही सोचता रहा कि गुरुजी मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
वे कहते थे, मैं अधूरा प्यार नहीं जानता, मेरा हर प्यार पूरा ही रहता है। मैं उनसे बहुत प्रश्न पूछता था, बच्चों के जैसे जिज्ञासा रखता, और वे बड़े ही सरल ढंग से मेरे प्रश्नों का उत्तर विद्वत्ता से नहीं, बड़े प्यार से, उपयोगिता तथा आदर्श की दिशा में प्रेरित करते हुए देते थे।
एक दिन मैं घिया मंडी पहुंचा, पूछा, माताजी कहाँ है? एक बच्चे ने बताया कि माताजी सतीश के लिए कोट का कपड़ा खरीदने नीचे गई हैं। उसने दौड़कर माताजी को मेरे आने की सूचना भी दे दी। माताजी लौटते में मेरे लिए कचौड़ी और समोसा ले आईं।
मैंने कहा, माताजी गुरुजी किताब में लिखते हैं कि यह नहीं खाना चाहिए। तो वे बोली, मैं तो नहीं लिखती, खाना मेरा विषय है। उनका यह प्यार ही था जिससे आदमी बहुत कुछ कर गुजरता है।
मेरा लड़कपन। जब मैं पहले पहल माताजी से मिला तो उनका स्वरूप एक साधारण गृहस्थ महिला जैसा था। मैं कहता था, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो माताजी कहती थी, मैं तेरी सिफारिश गुरुजी से कर दूंगी, तू भी गुरुजी से बोल देना।
हम लोग लड़कपन भी खूब करते थे।
एक बार हम मथुरा गए हुए थे, प्रो जीरो रामचरण महेंद्र जी भी आए हुए थे। वे उन दिनों अखंड ज्योति के सहसंपादक थे। वे लौटने वाले थे तो हम लोग, मैं और चंद्रकांत गुरुजी का भांजा, उनको स्टेशन पहुंचाने की जिद करने लगे।
उन्होंने गुरुजी से मना करने के लिए कहा तो गुरुजी बोले, ये ओकट फोकट हैं, इनको जाने दो। रास्ते में तांगा पलट गया पर हमें चोट कोई नहीं आई। हम लोगों को चाय पीने की बहुत आदत थी। रात में मथुरा में चाय कहीं मिली नहीं तो हम लोग दूध ले आए और सतीश भाई साहब से कहा कि कहीं से स्टोव, चाय पत्ती और शक्कर का इंतजाम करो। हम लोग तलघर में ठहरे थे।
सतीश भाई साहब पम जीरो लीलापत शर्मा जी के पास गए और बोले कि डॉक्टर
साहब को चोट आ गई है, इसलिए सेक करना है और रसोई घर में जाकर स्टोव के साथ शक्कर और चाय पत्ती भी ले आए।
पंडित जी हमको देखने चले आए, फिर तो हमारी बड़ी मुसीबत हो गई। सतीश भाई साहब बोले, डॉक्टर अभी अभी सोया है, जगाओ मत। पंडित जी को असलियत पता चल गई। सुबह गुरुजी के पास शिकायत हुई तो गुरुजी बोले, लीलापत इनके रोज चाय पीने का इंतजाम कर दो। गुरुजी की आदर्शवादिता। सतीश भाई साहब की शादी जब पक्की हुई तब गुरुजी ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए एक एक रुपया लिया था। मुझे और श्रीपर्णा को एक एक नोट लिफाफे में भेजा था। जब हम शादी में गए तो एक दिन गुरुजी गायत्री तपोभूमि में यज्ञशाला की दीवार से टिककर फर्श पर बैठे थे। हम लोग सामने बैठ गए। मैंने कहा, गुरुजी एक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, पहले मेरी सुन। 8-10 व्यक्ति जो शादी में आए थे उनके साथ मैं भी बैठ गया।
गुरुजी बोले, जो कोई व्यक्ति शादी के लिए कोई उपहार लाया हो उसे अपने बक्स में ही रखे रहे, नहीं तो मैं उसका उपहार नाले में फेंक दूंगा। अपने जीवन का ढंग मैं अपने लड़के की शादी में नहीं तोड़ूंगा, ठीक से याद रखना। इससे पहले कि गुरुजी मुझे ढूंढते, मैं वहां से भाग लिया। मेरी बात बिना कहे ही मना जो हो गई थी।
गुरुजी की नियमितता।
35 वर्षों में कभी भी गुरुजी माताजी से मिलने में मुझे कभी 5 मिनट से अधिक देर नहीं लगी।
गायत्री तपोभूमि में वे कभी भी घिया मंडी से चलकर पूर्णाहुति में पहुंचने से नहीं चुके।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पत्र का उत्तर नहीं आया हो।
गुरुजी के पत्र लिखने का एक विशेष अंदाज था, माताजी पत्र पढ़ती और पत्र पढ़ते पढ़ते में ही गुरुजी जवाब लिखते रहते। जो विशेष बात पूछी जाती उसका जवाब वह अंतिम 2-4 लाइनों में ही लिख देते। यहाँ माताजी का पत्र पढ़ना समाप्त होता, वहाँ गुरुजी का पत्र लिखना। मैंने गुरुजी की पहली गोष्ठी गायत्री तपोभूमि के हॉल में द 14th of June 1961 में सुनी। उन्होंने कहा कि जो अगले 30 वर्ष तक मुझसे जुड़ा रहेगा उसके पूर्व जन्म में कुछ भी हो लेकिन फिर उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी।
मैं जिस किसी के लिए जो कुछ भी कहता हूँ उसको सच होना ही होगा।
शक्ति संचार साधना की दीक्षा।
सन 1961 की ही बात है।
गुरुजी तपोभूमि गेट के दाईं ओर के हॉल में 20-25 लोगों की गोष्ठी ले रहे थे।
गोष्ठी के बाद उन्होंने 5 लोगों का नाम लिया और विशेष बात करनी है कहकर घिया मंडी बुलाया।
उस दिन गुरुजी ने अखंड दीपक साधना कक्ष के सामने बैठकर हम 5 व्यक्तियों को, श्री जानकी वल्लभ जोशी, कलकत्ता का एक परिवार, मैं और एक व्यक्ति और थे, शक्ति संचार साधना की दीक्षा दी। उन्होंने कहा, मैं और मेरे गुरु रविवार और बृहस्पतिवार को सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से 1 घंटे बाद तक तथा रात को 9 से 9:30 बजे तक शक्ति का संचार करेंगे। किसी एक समय तुम लोग सिर्फ चुप बैठना। यदि इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तो यह निरंतर मिलती रहेगी। मैं यह साधना आज भी लगभग नियमित करता हूँ। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। लगभग 25 वर्ष तो हो गए साधना करते हुए। गुरुजी बोले, बेटा, विटामिन सी खाने से कुछ फायदा होता है। मैंने कहा, गुरुजी, यदि कमी होती है तो जरूर फायदा होता है। वे बोले, फायदा मालूम पड़ता है क्या? मैंने कहा, गोली क्या कर रही है यह तो मालूम नहीं पड़ता लेकिन तकलीफ दूर हो जाती है। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह अच्छा है कि तुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता, जिस दिन मालूम पड़ने लगेगा उस दिन पगला जाएगा। ऐसे ही ठीक है। गुरुजी माताजी, दादा गुरुजी का चित्र।
माताजी ने अपना एक चित्र मुझे दिया जो आज भी मेरे पास है।
गुरुजी का एक चित्र पम 0 लीलापत शर्मा जी ने मुझे दिया था,
जिसकी कापी माताजी अपने पूजा कक्ष में रखती थी और उन्होंने बताया था कि आरंभिक दिनों में गुरुजी जब अज्ञातवास में होते तो मैं इस चित्र से उनसे संपर्क स्थापित कर लेती थी और गायत्री परिवार की समस्याओं का हल भी पूछ लेती थी। 1965 में मेरा बड़ा बेटा अरविंद बीमार पड़ा। मैं उन दिनों कानपुर में था।
मेरी पत्नी श्रीपर्णा लखनऊ में थी। उसने गुरुजी को पत्र लिखा।
गुरुजी ने मुझे पत्र लिखकर लखनऊ बुलाया कि वे किसी कार्यवश लखनऊ आ रहे हैं और हमारे ही घर पर रुकेंगे।
जब वे घर आए तो मुझसे बोले, मैं तेरे लिए एक चीज लाया हूँ। उन्होंने होल्डॉल खोला और दादा गुरुजी का एक चित्र मुझे दिया
जो आज भी मेरे पास है।
मैंने उस चित्र को पाते ही गुरुजी को प्रणाम करके वायदा किया कि मैं इनसे, दादा गुरुजी से कभी कुछ मांगूंगा नहीं।
मैंने गुरुजी से पूछा कि आपने यह चित्र कैसे उतारा, क्या आपके पास कैमरा था?
गुरुजी ने कहा, नहीं, जिस गुरु पूर्णिमा में मुझे गुरुजी के दर्शन करने थे सन 1960 में, उस समय हम 7 शिष्य वहां पहुंचे थे। मैंने पूछा, ये कौन है?
तब उन्होंने कहा कि भारत से हम 2 लोग थे, एक दक्षिण भारत में है।
उन्हीं ने अपने कैमरे से ये चित्र लिए थे जिसकी कापी उन्होंने मुझे भेजी।
मैंने पूछा, बाकी 5 कहाँ हैं? गुरुजी ने कहा, ये 5ों विदेश में हैं और अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं।
विशेष चर्चा।
एक बार मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यह सन 1963-64 की बात होगी।
गुरुजी बोले, मैं अपने गुरु का स्थान हिमालय में ले लूंगा। मैंने पूछा, उनका क्या होगा? वे बोले, वे अपने गुरु का स्थान ले लेंगे। मैंने कहा, फिर उनका क्या होगा? तो वे बोले, वे विश्राम करेंगे। मैंने पूछा, उनका विश्राम कैसा होता है?
क्या सोएंगे, कितना सोएंगे, क्या सोते रहेंगे? गुरुजी ने कहा, नहीं, उनके विश्राम का मतलब होता है सूक्ष्म जगत में तप। वे सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में अपनी तप शक्ति से ही पहुंचते हैं और जब जब ईश्वरीय विधान को आवश्यकता होती है वह इनका उपयोग एक ऋषि या अवतारी के रूप में सृष्टि संतुलन का उत्तरदायित्व सौंप कर करते हैं।
मैंने पूछा, गुरुजी, हिमालय में कौन सा भाग सबसे अच्छा है? गुरुजी बोले, हिमालय का सबसे अच्छा स्थान हिमालय का हृदय है।
हमारे गुरुजी उससे भी बहुत ऊपर रहते हैं। वे सूक्ष्म शरीर में हैं और स्थूल शरीर धारण कर सकते हैं। उनसे कोई प्रयास से नहीं मिल सकता। मैं भी अपने प्रयास से नहीं मिला।
उनकी कृपा, इच्छा और काम का उद्देश्य ही उनसे मिलाता है। हिमालय का हृदय एक छोटा स्थान है। यह 10-12 किलोमीटर लंबा और कुछ किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता।
लोग हेलीकॉप्टर से भी सारी कोशिशें करके देख चुके हैं।
यहाँ हमेशा सिद्ध पुरुष ऋषि रहते हैं।
सीधा रास्ता कठिन है, घूमकर जाना पड़ता है।
गुरुजी की दिव्य दृष्टि। गुरुजी दिव्य दृष्टा थे, उन्हें भूत भविष्य सबका ज्ञान था।
इसका मैंने कई बार एहसास किया है।
गायत्री तपोभूमि के दाईं ओर कक्ष में गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। मैं भी सुन रहा था। पीछे से किसी ने एक चिट आगे बढ़ाई और सबसे आगे वाले ने गुरुजी को दी। प्रवचन बंद हो गया। गुरुजी ने सूचना दी कि रेडियो न्यूज आई है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल के दौरे से स्वर्गवास हो गया है।
जो बच्चे उपवास करना चाहें सूचना दे दें।
बाहर निकलते ही मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे? गुरुजी ने कहा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे। जबकि उस समय तक ऐसी न कोई सूचना थी न संभावना। एक बार गुरुजी ग्वालियर में जब हमारे यहाँ ठहरे हुए थे, तब वे भोजन करते हुए बोले, अमल कुमार, तुझे एक मजेदार बात बताता हूँ। मैंने कहा, मजेदार बात? गुरुजी जरूर बताइए। वे बोले, लोग अब अपने घरों से सोना निकालेंगे। ज्यादा सोना पहनना समाज में सभ्यता का द्योतक नहीं रहेगा। उन दिनों में कोई महिला यदि सोना नहीं पहनती थी, शादी ब्याह में तो विशेषकर, तो उसे गरीब घर की माना जाता था।
हमें सुनकर आश्चर्य लगा, पर कुछ दिनों बाद चीन ने हमला किया और काफी मात्रा में सोना बाहर चला गया। आज की परिस्थितियों को भी देखे तो ज्यादा सोना पहनना रईसी तो हो सकता है, पर आधुनिक सभ्यता नहीं रह गया है।
जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब चीन जीतता जा रहा था। श्री घनश्यामदास बिरला जी ने गुरुजी से पूछा, आचार्य जी, क्या करूं?
मैं अपना पैसा विदेश बैंक में स्थानांतरित कर दूं क्या?
चीन लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का क्या होगा? गुरुजी ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, युद्ध 7 दिन में बंद हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ।
एक दिन मैं और गुरुजी इंटर क्लास कोच में मथुरा से ग्वालियर जा रहे थे।
गुरुजी ने मुझसे पूछा, अच्छा बता,
पेंटन टैंक कैसे चलता है? मैंने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने कहा, उसमें सारा फायरिंग सिस्टम कंप्यूटर का है।
हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानियों का गणित लड़खड़ा गया। इस कारण लाहौर से अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर में एक भी बम नहीं गिरा पाए। बेटे, इनका गणित हमेशा कमजोर होगा।
इसी प्रकार चीन युद्ध में भी हिमालय के ऋषियों ने भारत की मदद की थी।
सन 1971 में जब गुरुजी अज्ञातवास के लिए जाने वाले थे, तो विदाई में बहुत भीड़ थी। मैं उनके पास गया तो वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोले, देख
कितने डॉक्टर हैं। वे प्यार से सदा मुझे डॉक्टर बुलाते थे। मेरो पड़ा कि आगे कौन मुझे इस नाम से बुलाएगा।
गुरुजी तुरंत मेरे मनोभाव समझ गए और बोले, मैं तुझे बिना सिविल सर्जन बनाए मरूंगा नहीं। गुरुजी मथुरा छोड़ने के पहले अपना सब कुछ बांट गए। गुरुजी ने केवल धन संपत्ति ही नहीं बांटी, बल्कि अपना शरीर, मन, बुद्धि व प्रतिभा भी भगवान के काम में लगाई। जब गुरुजी हरिद्वार में रहे, तब सतीश भाई साहब 250 से 500 रुपया प्रति माह भेजते थे।
गुरुजी कहते थे कि बेटा अपने बाप को पैसा नहीं देगा, सेवा नहीं करेगा तो अगले जन्म में बैल बनेगा। यही बात उन्होंने हमारे बच्चों से भी कही थी। मेरे बच्चे मुझे नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। मैं कहता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे कहते हैं, पिताजी, हमें बैल नहीं बनना है। गुरुजी अपने खर्चे के विषय में बहुत कड़क थे। उन्होंने मिशन के पैसे को अपने निजी खर्च के लिए किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया। हमें याद है जब डॉक्टर प्रणव जी का BHEL में एक्सीडेंट हुआ था, तो हरिद्वार से दिल्ली ले जाने में केवल इसीलिए देर हुई थी कि सतीश भाई साहब को रात में पैसे लेकर मथुरा से आना था। किसी भी स्थिति में गुरुजी ने पोस्ट ऑफिस या बुक स्टॉल से पैसे लेना स्वीकार नहीं किया था।
संगीत प्रशिक्षण। मथुरा में एक बार गुरुजी को संगीत सीखने का विचार आया।
उन्होंने एक संगीत टीचर भी नियुक्त कर लिया और सबसे कहा कि सब लोग संगीत सीखेंगे। माताजी, गुरुजी और बाकी सब लोग भी संगीत की कक्षा में बैठने लगे। माताजी ने हारमोनियम पर स्वर लिख लिए और रीत दबा दबा कर सीखने लगी।
गुरुजी बोले, मैं भी सीखूंगा, और नियमित रूप से कक्षा में आने लगे। गुरुजी बड़ी गहराई से सीखने लगे।
मास्टर जी को पूछते, ऐसा क्यों नहीं, इससे क्या होगा, ऊंचा क्यों नीचा क्यों नहीं, मास्टर साहब सिखाते रहे।
7 दिन बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा, पता लगाओ मास्टर साहब बीमार तो नहीं हो गए। एक व्यक्ति को घर भेजा। पत्नी ने कहा, मास्टर साहब बाहर गए हुए हैं। एक दिन मास्टर जी गुरुजी को बाजार में मिल गए। गुरुजी ने उन्हें नमस्कार किया और बोले, मास्टर साहब आपका स्वास्थ्य कैसा है?
आप बाहर गए लौटे तो आए क्यों नहीं? मास्टर जी ने हाथ जोड़े और बोले, आचार्य जी आपके पास बहुत कलाएं हैं। मेरे पास तो एक ही कला है, वो भी थोड़ी सी। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए?
मुझे दाल रोटी खाने दीजिए। आपको सिखाऊंगा तो मैं ही भूल जाऊंगा। मुझको आप कृपा करके माफ कर दीजिए। ऐसे ही ब्रह्मवर्चस में जितेंद्र तिवारी, अशोक तिवारी और मेरे साथ हुआ।
हम लोगों ने गुरुजी के कहने पर बड़ी ईमानदारी से धपली सीखना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुम 1 साल तक धपली सीखो और इसके बाद भी तुम्हें न आए तो तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी ही किस्मत खराब होगी।
हम लोग सचमुच सीखते रहे।
पहली लाइन में बैठते तो आगे वालों की ताल बिगड़ने लगी।
शास्त्री जी ने बीच की लाइन में बिठा दिया, तब आगे वाले और पीछे वाले दोनों की ताल बिगड़ने लगी। फिर उन्होंने सबसे पीछे बिठा दिया,
अब पीछे वालों की ताल बिगड़ने लगी।
हारकर एक दिन हाथ जोड़कर बोले, आप लोग ब्रह्मवर्चस में वैज्ञानिक का ही काम कीजिए। लेकिन गुरुजी को संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। गुरुजी का आश्वासन। एक बार गुरुजी लखनऊ आए हुए थे, हमारे घर पर ही रुके थे।
जब गुरुजी मथुरा के लिए लौटने लगे तो स्टेशन पर बातचीत के दौरान मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस जन्म में तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, यदि पागल नहीं हो गया तो, पर आगे मैं आपको कैसे पहचानूंगा? पहचानूंगा भी या नहीं, अखंड ज्योति का सदस्य बनूंगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। गुरुजी ने कहा, तू कभी पागल नहीं होगा और जहां तक मेरे साथ का सवाल है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
कभी अभिभावक के रूप में तो कभी मित्र तो कभी यूं ही। मैंने कहा, गुरुजी कब तक? गुरुजी बोले, जब तक तू पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेगा। उनकी बात सुनकर मैं भाव विभोर हो गया।
मन में तो आया कि चरणों में लौट जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि हम स्टेशन पर खड़े थे।
मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। एक दिन दोपहर को 2 बजे मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी अकेले बैठे थे। मैंने पूछा, गुरुजी आपकी तबीयत ठीक है? गुरुजी ने कहा, हाँ। मैंने कहा, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, आपकी आंखें लाल हैं। गुरुजी बोले, हाँ बेटा,
मैं कुछ दिन से सो नहीं रहा हूँ और तुम लोग सुधर नहीं रहे हो,
इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ।
लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि कितने ही जन्म क्यों नहीं लगे, पर मैं भी तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बस इस होड़ में ही आंखें लाल हैं। मेरे पास कृतज्ञता के लिए कुछ नहीं था, सिवाय हृदय पर से न मिटने वाले एक संदेश के।
एक दिन उन्होंने कहा, बेटा प्रारब्ध तो बदला नहीं जा सकता, कष्ट तो राम कृष्ण शंकराचार्य बुद्ध रामकृष्ण परमहंस सबको हुआ, पर मैं अभिभावक की भूमिका जरूर निभाऊंगा। चोट लगेगी तो सबसे पहले पहुंचूंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा।
मेरे पास जो तप की पूंजी है, समय पर उसका उपयोग करूंगा, पर याद रखना हम बदला नहीं चाहते, पर भगवान भी न्याय नहीं छोड़ता। अगर तुम अपने कष्ट दैख और हानि की कीमत पर किसी का चिंतन चरित्र और व्यवहार नहीं उभारोगे, तब तक मेरे उस तप का पटाना नहीं होगा और आगे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।
शांतिकुंज में एक गोष्ठी में गुरुजी ने कहा था, बच्चों जो तुम लोग शांतिकुंज के स्थायी सदस्य हो, हमारे बच्चे हो।
हम किसी से बिछुड़ने के लिए कभी नहीं मिलते हैं और यदि प्यार करते हैं तो फिर पूरा ही प्यार करते हैं। हम तुम लोगों को समाज के लिए लाए हैं।
तुम्हारे संस्कार अच्छे बने, इसीलिए हम तुम्हें बाहर का अन्न नहीं खिलाएंगे। उसकी व्यवस्था तुम्हारे गुरु तुम्हारे पिता ने कर रखी है,
यह तुम्हारा हक है।
जब तक यहाँ रहोगे मोटा अन्न मोटा वस्त्र हमारा उत्तरदायित्व रहेगा,
क्योंकि तुम कमाओगे नहीं,
जीवन भर हमारे बच्चे रहोगे। फिर उन्होंने कहा, आटे का घाटा नहीं घी के नहीं दर्शन, बने रहो तुम बरसन। यह उनका हम लोगों के लिए सादगी भरा जीवन जीने का शिक्षण था। गुरुजी की पीड़ा। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि तुम मुझे स्वप्न में देखो तो वह निरुद्देश्य नहीं होगा। गुरुजी के शरीर छोड़ने के काफी समय बाद एक दिन मैंने उनको स्वप्न में देखा।
मैंने देखा वे एक कमरे में बैठे हैं। मैं उनके पास गया और प्रणाम किया।
गुरुजी बहुत दुबले थे और शरीर छोड़ने की तैयारी में थे।
उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि अब मैं कारण शरीर में जाने वाला हूँ। मैंने कहा, आप बड़े प्रसन्न और स्वस्थ दिख रहे हैं, पर इतने दुबले क्यों हैं? वे बोले, मेरा यह शरीर तुम लोगों के चरित्र चिंतन और व्यवहार से बना है और तुम लोग इस मामले में दुबले पड़ रहे हो, आगे देखता हूँ।
बड़ा विलक्षण प्यार था उनका। लोकेश नाम का एक कार्यकर्ता जिसको गुरुजी ने देश विदेश के कई स्थानों पर भेजा।
उसे अहंकार हो गया था। यह सन 1986 की बात है।
जब उसकी शिकायतें कुछ ज्यादा ही आने लगी तो उसे निकाला जाना घोषित कर दिया गया।
उसने जबलपुर कोर्ट में केस चलाया। गुरुजी उन दिनों बाहर कहीं जाते नहीं थे। सहज ही चर्चा में उनसे पूछा गया कि गुरुजी आप जबलपुर जाएंगे क्या? जाएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? इस पर गुरुजी ने कहा, मैं तो कहीं जाता नहीं, लेकिन यदि जाना ही पड़ा तो जबलपुर में मैं अपने बेटे लोकेश के घर ही ठहरूंगा। उसने कई वर्षों तक मेरी बहुत प्रशंसा की है, थोड़ी बुराई कर दी तो क्या हर्ज है।
ऐसे ही ब्रह्मवर्चस के एक कार्यकर्ता की ड्यूटी अखंड दीपक के पास सुरक्षा में थी। उसने वहां पर गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। रसीद काटने में भी उसने कुछ होशियारी की।
किंतु महाकाल से कुछ छिपा रह सकता है क्या?
उसकी चोरी पकड़ी गई। माताजी के पास शिकायत पहुंची।
माताजी ने उसे समझाया व आइंदा ऐसा न करने के लिए कहा।
उस कार्यकर्ता ने माफी मांगी, उसे माफ भी कर दिया गया।
गलती की है तो उसके लिए क्षमा ही पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है।
उन कार्यकर्ता ने तो गुरुजी माताजी से प्रायश्चित के विषय में कुछ पूछा नहीं, परंतु कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने स्वयं एक कार्यकर्ता के द्वारा उनके लिए संदेश भिजवाया कि उससे कहो वह 3-4 अनुष्ठान अवश्य कर ले, अन्यथा भविष्य में इस पाप का दंड रोग शोक आदि के रूप में बहुत भयंकर रूप से भुगतना पड़ेगा। समाज का पैसा हजम नहीं होगा, कोर बनकर फूटेगा। यह उनका प्यार ही था कि गलतियों को क्षमा भी करते थे और भविष्य की भी चिंता करते थे। मेरा छोटा भाई यतीन्द्र दत्ता गुरुजी से अक्सर मिलता रहता था। एक दिन हम दोनों गुरुजी के पास घिया मंडी गए। यतीन्द्र ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। मैं विदेश जाना चाहता हूँ।
वीजा और पैसे का इंतजाम कैसे होगा?
और वहाँ भी आप मेरी रक्षा करना। गुरुजी बोले, पहले तू अपना चौथा प्रश्न भी बोल दे। यतीन्द्र ने पॉकेट से चिट निकाली और देखकर बोला, हाँ गुरुजी, यह चौथा प्रश्न भी है। फिर गुरुजी बोले, तू जल्दी विदेश जाएगा।
अच्छा बता,
तेरे पास पैसे कितने हैं? यतीन्द्र बोला, 1,500-2,000 रुपये हैं। गुरुजी एक कहानी सुनाने लगे। एक जाट मेले में खाट बेचने आया। गुरुजी खाट पर ही बैठे थे और हाथ से दिखाकर बोले, आजू नहीं है, बाजू नहीं है, बीच का नहीं है झंगड़ झोला,
3 नहीं है पाए, और एक पाया ऊंचा करके बोला, खटिया ले लो भाई।
100-1,500 रुपये में तू अमेरिका जाएगा। यतीन्द्र बोला, गुरुजी इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरे जाने का टिकट, वीजा, स्कॉलरशिप और अच्छी नौकरी सब कर दूंगा। अब तू एक काम कर, माताजी के पास जाकर खाना खा।
ऋषि मुझसे मिलने आते हैं। एक दिन जब मैं डॉक्टर
प्रणव पंड्या जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्री जितेंद्र जी और 2-3 और लोग गुरुजी से दोपहर में लेखन करने का शिक्षण ले रहे थे, गुरुजी ने कहा, कल से तुम लोग बाहर बैठना,
3 शेड में पर्दा लगा देंगे।
मुझसे मिलने कुछ बड़े लोग आएंगे। मैंने उपाध्याय जी से पूछा कि कौन आ रहा है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे पता नहीं।
दूसरे दिन स्वयं गुरुदेव साधना कक्ष में आए और कहा कि कल जो मैंने कहा था कि बड़े लोग मुझसे मिलने आएंगे, तब मेरा मतलब किसी मिनिस्टर से नहीं था। ऋषि लोग मुझसे मिलने आते हैं।
गुरुजी जीवन के व्यवहारिक सूत्र बड़ी सरलता से समझा देते थे।
वे कहते थे, यदि तुम्हें कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो उसमें प्रेम जोड़ देना।
जैसे रेडियो, घड़ी, फर्नीचर लेना हो तो बच्चों के जन्मदिन पर, पत्नी के जन्मदिन या विवाह दिन से जोड़कर आगे पीछे खरीदना चाहिए। किसी के घर ठहरो या उपकार लो तो शालीनता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मिठाई का डिब्बा ले आए या पिक्चर दिखा दिया, यह काफी नहीं है।
या तो सीधे पैसे दो या यह पता लगाकर कि उनकी आवश्यकता की चीज क्या है वह ला कर दो।
एक दिन मैं और गुरुजी पैदल ही गायत्री तपोभूमि से घिया मंडी जा रहे थे। सामने से एक शवयात्रा आई। गुरुजी बोले, जब कभी शवयात्रा देखो तो उसके साथ 2-4 कदम चलना चाहिए, और वे उसके साथ चलने के लिए मुड़ गए। हम कुछ दूर शवयात्रा के साथ चले, फिर हम लोग घिया मंडी गए।
30 वर्ष में सन 1960 से 1990 के बीच यह दूसरा समय था
जब गुरुजी मुझ पर नाराज हुए।
एक नया लड़का था केशरवानी, हम लोगों ने उसे स्टॉल पर काम दिया। वह सवेरे से शाम तक बुक स्टॉल खुला रखता था। अखंड ज्योति के सदस्य भी बहुत संख्या में बनाता था।
हमने सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी, पर वह जो सदस्य बबनाता था उसमें ऊपरी रसीद पर तो 350 रुपया लिखता था, यानी आजीवन और कार्बन के नीचे 40 रुपया। कुछ दिनों बाद वह काफी पैसे लेकर भाग गया। ब्रह्मवर्चस के बुद्धिजीवी कहलाने वाले हम सभी की गुरुजी के सामने पेशी हुई। गुरुजी बोले, दत्ता, किसी आदमी का ऊपरी दिखावा या कार्य नहीं देखा जाता। जिम्मेदारी देने के पहले गहराई से व्यक्तित्व परखना चाहिए। इतना ही खैर है कि यह केशरवानी तुझे अपना चेला बनाकर नहीं ले गया। मैं सिर नीचा करके सुनता रहा।
हमें अपनी भूल का एहसास हुआ।
हम लोग केशरवानी पर जरा ज्यादा ही विश्वास करने लगे थे।
देवास में गुरुजी कहीं जाने की तैयारी में थे। जब वे कार में बैठ गए तो हाथ का इशारा करके मुझे बुलाया और बोले, दत्ता
एक बात सुन। देख, जो व्यक्ति चार आदमियों को मेरे साथ खाना खाने बुलाए उसके यहाँ तीन जाएंगे, जो तीन को बुलाए उसके यहाँ दो, और जो दो को बुलाए उसके यहाँ केवल मैं जाऊंगा। ऐसा ही हो, इसकी जिम्मेवारी तेरी है। सिक्स एक बार गुरुजी कहीं से आकर ग्वालियर होते हुए मथुरा जा रहे थे।
हमें प्रोग्राम मालूम था।
प्रातः 3:00-4:00 बजे का समय था। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग गुरुजी से मिलने आ गए।
गुरुजी वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गए।
5-6 लोग गुरुजी के लिए चाय लाए थे। सब लोग थमस के साथ एक एक कप ही लाए थे।
गुरुजी ने पूछा, तुम में से कोई दो कप लाया है क्या? कोई नहीं लाया, सब गुरुजी के लिए एक कप लाए हैं। फिर कहा, स्टॉल से एक कप ले आओ, मैं तुम सबकी केतली से थोड़ी थोड़ी चाय ले लेता हूँ, बाकी तुम लोग पियो। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि एक कप नहीं दो कप तो लाना ही चाहिए था।
गुरुजी अकेले पीते ऐसा कैसे संभव था? अध्यात्म क्षेत्र में कुंडलिनी जागरण का बहुत महत्व है। एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मेरी कुंडलिनी जगा दीजिए। पूज्यवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा व एक क्षण रुककर बोले, बेटा गधा कितना वजन उठा लेता है? प्रश्नकर्ता कुछ समझ नहीं पाया। कुंडलिनी जागरण से गधे का क्या ताल्लुक? गुरुजी की ओर हैरानी से देखता रहा। फिर गुरुजी ने कहा, और बकरा? वह व्यक्ति गधे व बकरे के वजन उठाने की क्षमता की तुलना करने लगा। बोला, बकरे से तो गधा 10 गुना अधिक वजन ढो सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा, बेटे
अभी तो तू बकरे से भी छोटा है। अब स्थिति स्पष्ट थी कि पात्रता के विकास से ही प्रतिभा प्राप्त होती है,
अन्यथा बिना परिश्रम की शक्ति अपने ही विनाश का कारण बनती है। एक दिन एक परिवार गुरुजी के पास मिलने गया। पूज्यवर उन दिनों प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग कुशल क्षेम पूछते थे।
उन्होंने सभी से पूछा।
सबने अपनी अपनी बात बताई, पर जब बहू की बारी आई तो उसने कहा, अकेले में बताऊंगी गुरुजी। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, मैं तुझसे अकेले में बात करूंगा। सभी परिवार के सदस्य गुरुजी से विदा लेकर नीचे उतर गए।
तब उन्होंने बहू से पूछा, बता बेटा
क्या बात है? बहू ने कहा, गुरुजी मेरी सास बहुत लड़ती है। गुरुजी ने कहा, बेटी मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, अब कभी लड़ाई नहीं होगी। फिर जोर से कहा, अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाया कर। इस प्रकार पारिवारिक विग्रह को टालने का कितना सरल समाधान दे दिया।
गुरुजी पल भर में सबको अपना बना लेते थे।
यह उनकी जबरदस्त कला थी।
काम के व्यक्ति को वे मीलों दूर से भी पहचान लेते थे।
गुरुजी के कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही थी।
वे अशोकनगर से होकर आगे किसी प्रोग्राम में जाने वाले थे।
हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप बस अपना 5 मिनट अशोकनगर में दे देना। गुरुजी ने कहा, 5 मिनट में तू क्या कर लेगा? हमने कहा, गुरुजी
हम मंच की तैयारी रखे रहेंगे,
जनता को एकत्र भी कर लेंगे, आप बस 5 मिनट में उद्बोधन देकर निकल जाना। गुरुजी बोले, लोग बाग पैर छूने के लिए दौड़ेंगे, 5-10 मिनट तो इसी में निकल जाएगा। मैंने कहा, गुरुजी
मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई आपके पांव न छुए, हम ऐसी व्यवस्था करके रखेंगे
जिससे आपका अधिक समय न लगे। हमने वैसी ही व्यवस्था करके रखी थी।
एक विद्यालय के प्राचार्य जी ने हमसे कहा, मुझे तो आप सबके जूते चप्पल रखने की सेवा दे दो। हमने कहा, यह सेवा तो हम किसी भी बच्चे से करवा लेंगे, आप कोई दूसरी सेवा ले लो। पर उन्होंने आग्रह कर वही सेवा अपने लिए चुनी।
गुरुजी मंच पर आकर बैठ गए। इधर उधर नजरें दौड़ाईं, उन प्राचार्य जी पर भी नजर पड़ी।
गुरुजी ने मुझे बुलाया और उनकी ओर इशारा करके कहा, मुझे तो उस व्यक्ति के हाथ से पानी पीना है। मैं तुरंत उन प्राचार्य महोदय के पास जाकर बोला, गुरुजी आपके हाथ से पानी पीना चाहते हैं।
जाइए आप गुरुजी को पानी पिला दीजिए। उन्हें थोड़ा संकोच हुआ, बोले, मेरे हाथ तो साफ नहीं हैं। मैंने कहा, पर गुरुजी तो आपके ही हाथ से पानी पीना चाहते हैं। वे भी उस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ट्रे पकड़कर गुरुजी को पानी पिलाया। गुरुजी ने वहां लोगों की श्रद्धा देखी तो स्वयं ही आधे पौन घंटे का प्रवचन दिया। फिर बोले, अच्छा करने दो सभी को प्रणाम, और चरण स्पर्श करने की अनुमति भी दे दी। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा
भोजन की व्यवस्था भी की है क्या? हमने कहा, जी गुरुजी, हमने सोचा यदि आपका भोजन करने का मन होगा और अनुमति देंगे तो हम भोजन भी करा देंगे। सो हमने भोजन की व्यवस्था भी पहले से ही बनाकर रखी है। इस प्रकार वे सूक्ष्म दृष्टा अपने बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी करते रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार से निराश नहीं किया।
मेरे एक मित्र मेहता जी रतलाम में डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे। उनके पुत्र नरेश मेहता गुरुजी के पास आए और बोले, गुरुजी, मैंने दक्षिण भारतीय लड़की से शादी की है।
बहुत अच्छे स्वभाव की है।
मेरे साथ पढ़ती थी।
पिताजी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या करूं? गुरुजी बोले, तेरे पिताजी क्यों स्वीकार नहीं करते?
तू जाकर बोल कि यदि तुम दक्षिण भारत की लड़की स्वीकार नहीं करते तो फिर माँ को दक्षिण भारतीय साड़ी क्यों पहनने देते हो? वहाँ के चावल और लौंग इलायची भी खाना बंद कर दो। बहू को स्वीकृति मिल गई। एक दिन चिन्मय ने माताजी अपनी नानी से पूछा, आप कहती हैं कि नारी युग आएगा, यह कैसे होगा?
आज की नारी तो बहुत पिछड़ी है।
माताजी बोली, बेटे, सवाल पिछड़ेपन का नहीं है।
अच्छा काम सब कर सकते हैं और युग पढ़ाई से नहीं, अच्छाई से आता है। नारियों में ईर्ष्या और द्वेष चला जाएगा तो वही उनकी योग्यता और प्रखरता होगी। गुरुजी में करुणा का केवल भाव ही नहीं था बल्कि उनके अंदर करुणा जीवंत थी।
उनके बड़े बेटे श्री ओम प्रकाश भाई साहब सन 1960-61 से मेरे मित्र हैं।
कभी कभी वे गुरुजी के जीवन की बहुत पुरानी बातें भी सुनाते हैं।
एक दिन उन्होंने गुरुजी की युवावस्था की एक घटना सुनाई। यमुना में बाढ़ आई हुई थी, बहुत पानी भरा था, जानवर भी खूब मरे थे,
लोगों के घर बह गए थे,
बहुत हानि हुई थी। गुरुजी रोज बाढ़ का पानी देखने जाते थे।
एक दिन देखा कि एक छोटे से टापू जैसे जमीन के टुकड़े पर एक कुत्ता घिरा हुआ है। पता चला वह 3 दिन से वहां फंसा है। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। सब उसके प्रति दयाभाव प्रकट कर रहे थे, पर उसे बचाए कौन? कौन जाता? कोई जाने को तैयार नहीं था,
वह भी एक कुत्ते को बचाने।
कोई आदमी तो है नहीं जो सीधी तरह नाव पर बैठ जाए।
उन्होंने बड़ी मुश्किल से 3 रुपये में एक डोंगी वाले को तैयार किया।
डोंगी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रही, पर कुत्ता ऐसा डरा हुआ था कि वह कैसे भी नाव पर आने को तैयार नहीं था।
युवक श्रीराम रोटी दिखाते रहे पर वह नहीं आया। 2-3 चक्कर लगाने के बाद डोंगी वाले बोले, चलो भाई, मरने दो कुत्ते को। युवक श्रीराम बोले, एक चक्कर और। जैसे ही डोंगी उसके पास पहुंची कि युवक श्रीराम नाव से जमीन के उस टुकड़े पर कूद पड़े और बड़ी फुर्ती से उस कुत्ते को उठाकर वापस डोंगी में कूद पड़े।
कुछ क्षण डोंगी जोर से डगमगाई, पर श्रीराम कुत्ते के साथ डोंगी पर थे।
डोंगी वाले ने युवक श्रीराम को बेहिसाब गाली दी, बोला, खुद मरे तो मरे, मुझे भी मारेगा। वह तब तक गाली देता रहा जब तक कि किनारे पर नहीं आ गया। उन्होंने डोंगी वाले को 5 रुपये दिए। फिर भी डोंगी वाले ने उतरते समय कुत्ते को एक जोर की लात मारी और कुत्ता कुं 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 करता हुआ एक तरफ को दौड़ गया। ऐसा था गुरुजी का बचपन। दूसरा प्रसंग उस समय का है जब पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया था। श्री ओम प्रकाश जी भाई साहब पुरानी बातें याद करके रोज लिख रहे थे। मैं प्रतिदिन 5 में उनके पास जाता था। हम लोग चाय साथ ही पीते थे। एक दिन उन्होंने बताया, मेरे पास कल एक महिला आई और बोली, आप गुरुजी के पुत्र हैं। मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
आप मेरी बात सुने, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। उसने बताया, आज से करीब 25 वर्ष पहले की बात है। मैं रेल में 3rd क्लास डिब्बे में जा रही थी।
मैं गेट के पास ही नीचे बैठी थी।
मेरी आंख से आंसू बह रहे थे।
एक वृद्ध व्यक्ति खिड़की के पास सिंगल सीट पर बैठा था। वह बोला, बहन यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें हवा मिलेगी।
पास में स्थान है,
मैं वहां चला जाऊंगा। मैं वहां बैठ गई। अगले स्टेशन पर वह पानी ले आया। बोला, बहन मुंह धो लो, पानी पी लो। मैं बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चुप बैठ गया। फिर अगले स्टेशन पर पानी ले आया। बोला, बहन पानी पीने से कोई हानि नहीं होगी, और बड़ी नम्रता से गिलास लिए खड़ा रहा।
मैंने पानी पी लिया। फिर उसने पूछा, कहां जा रही हो? मैंने बताया, यहीं पास में एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं,
उनसे मिलने जा रही हूँ। वह बोला, अच्छा तो क्या मांगोगी? मैंने कहा, मौत। वह बोला, मौत वो नहीं देंगे, और कुछ नहीं मांग सकती। मैं चुप हो गई। वह भी बैठ गया। मैं 1 वर्ष पहले विधवा हो गई थी। मैंने उसे अपनी व्यथा सुनाई।
इतने में स्टेशन आ गया और भीड़ घुस गई।
पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय का शोरगुल करते फूल माला लिए हुए लोग आगे बढ़े। वह वृद्ध व्यक्ति उठते उठते कह गया, कल तू मुझसे मिलना। दूसरे दिन मैं वहां पहुंची तो देखा कि जिन संत से मैं मिलने आई थी वे और कोई नहीं, वह वृद्ध व्यक्ति ही थे। वहां बड़ी भीड़ थी।
प्रणाम करने वालों की लंबी लाइन लगी थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो एक कार्यकर्ता से कहा, उस बेटी को मेरे पास ले आओ। ट्रेन में मैंने उन्हें बताया था कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, मेरा भविष्य अंधकार में है।
मौत नहीं मांगूं तो क्या मांगूं?
गुरुजी से जब मैं मिली तो उन्होंने कहा, बेटी मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है,
इसको अच्छी तरह समझ ले। और एक कार्यकर्ता को बुलाकर कहा, तुम अपना काम किसी और को संभलवा दो और कहीं से कोई नव शिशु लेकर ही तुम मेरे पास आना, मैं 3 दिन यहाँ हूँ।
बस यही काम तुम्हें करना है। गुरुजी की आज्ञा मान वह मैटरनिटी होम गया।
वहाँ पता चला एक महिला की प्रथम डिलीवरी हुई थी।
डिलीवरी में माँ मर गई है, पिता ने बच्चे को लेने से मना कर दिया है।
उन कार्यकर्ता ने उस बच्चे को गोद लेने की बात कही। दूसरे दिन लेडी डॉक्टर स्वयं कार्यक्रम स्थल पर आई, यह देखने कि नवजात शिशु को कौन लेने वाला है और कैसे पालेगा। वह यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपार भीड़ देखकर और गुरुजी से मिलकर वह बहुत प्रभावित हुई। फिर गुरुजी से बोली कि लगता है बच्चे को सच्चे माँ बाप यहीं मिलेंगे।
मुझे बच्चे को लेने में थोड़ा संकोच हो रहा था,
मालूम नहीं किस जाति का होगा,
माता पिता कैसे होंगे,
घर वाले क्या कहेंगे, आदि नाना विचार मेरे मन में आ रहे थे। गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने बच्चे को गोद में ले लिया और बोले, बस यह अब ब्राह्मण हो गया। बेटी तुझे याद है ना, मैं तेरा पिता हूँ,
तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा,
लोग तेरी सराहना करेंगे, सहयोग देंगे, तू बस बच्चे को पाल और सारी व्यवस्था होती चली जाएगी, यह पिता हर क्षण तेरे साथ रहेगा, यह तेरा शानदार बेटा होगा,
तेरी इतनी सेवा करेगा कि और कोई बेटा क्या माँ की सेवा करेगा। मैंने उसका नाम पीयूष रख दिया। आज वह इंजीनियर है, मातृभक्त है, और जाने क्या जादू हुआ कि उस दिन से सब कोई मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे। मेरा हृदय भी रोने की अपेक्षा बच्चे की देख घटाव भाल में लग गया।
वह महिला बोलती भी जा रही थी और रोती भी जा रही थी।
फिर बोली, आपके पिता श्रीराम शर्मा मेरे भी पिता हैं, वे कभी नहीं मर सकते।
भाई साहब, आपको सब बताकर मैं हल्की हो गई, मेरा शांतिकुंज जाना सफल हो गया। गुरुजी माताजी एक प्राणदो शरीर थे, वे जीवन भर खादी पहनते रहे और वह भी गिने चुने कपड़े, लेकिन साफ और क्रीजदार। गुरुजी माताजी के जन्मदिन और विवाह दिन पर स्वयं जाकर साड़ी खरीद कर लाते थे। एक बार कोई दूसरा व्यक्ति माताजी के लिए साड़ी लाया तो गुरुजी दुखी हो गए। बोले, माताजी की साड़ी तू लाया तो तूने मुझे दुखी कर दिया, तू अपनी साड़ी वापस ले जा।
माताजी की हर साड़ी पर मेरी जिम्मेवारी साड़ी की नहीं बल्कि स्नेह की भी है।
जब गुरुजी अज्ञातवास में थे तो माताजी सख्त बीमार पड़ी।
मैं उन्हें देखने आया था। माताजी ने कहा, बेटा मुझे कोई दिल का दौरा नहीं है।
मैंने साधना में गुरुजी को देखा, वे ठंड में सिकुड़ रहे थे, उनका कुर्ता फटा था। उनका कष्ट देखकर मैं चीख उठी, बस मुझे यही तकलीफ है। मैंने कहा, फिर भी माताजी आप अपना इलाज तो करवा ही लीजिए। माताजी बोली, तू डॉक्टर है, तेरी बात भी मान लेती हूँ। इधर गुरुजी को भी माताजी की अस्वस्थता का आभास हो गया था और वे कुछ दिन के लिए शांतिकुंज लौट आए थे।
ऐसी ही एक घटना माताजी ने घिया मंडी में मुझे बताई थी।
गुरुजी बाहर गए हुए थे, अखंड दीपक की आग पूजा स्थल पर लग गई।
मैं घबरा गई, कहीं गुरुजी को कुछ हो तो नहीं गया। मैं बहुत घबराए, मैंने अपने भगवान से कहा कि जब तक मुझे गुरुजी की सूचना नहीं मिलेगी मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। मैं बराबर चिंता में डूबी रही।
शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला, गुरुजी सामने थे। बोले, शैलो तुझे क्या हो गया? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ,
आप कैसे हो? तब गुरुजी ने कहा, शैलो तू क्यों चिंता करती है, कोई खास बात नहीं, खिड़की से मेरी उंगली कट गई,
लेकिन चोट के बाद तुम्हारी घबराहट ने मुझे परेशान कर दिया और मैं वापस आ गया। तुम खाना खाओ और पानी पियो। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। एक दिन हम लोग उनके पास बैठे थे तो वे बोले, मैं शरीर छोड़ने पर कुछ ऐसा करूंगा जैसे कोई कुर्ता उतारता है, पर फिर मैं 3 स्थानों पर रहूंगा, एक माताजी के पास, दूसरा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, तीसरा अखंड दीपक। हमारे साथ अमेरिका के एक परिजन भी बैठे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी ये 3 स्थान तो शांतिकुंज में हैं और हम लोग तो बहुत दूर हैं। इस पर गुरुजी बोले, बेटा मेरा 4था स्थान उगता हुआ सूर्य होगा। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ने का मन बना लिया था तो उसकी तैयारी वे बहुत पहले से ही करने लगे थे। उन्होंने संकेत देना प्रारंभ कर दिया था। जहां आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा है, वहां पहले गुलाब की क्यारियां थी। गुरुजी ने एक दिन सोनी जी, महेंद्र जी, कपिल जी, उपाध्याय जी आदि सभी को बुलाया।
माताजी भी बैठी थीं और गुरुजी कहने लगे, माताजी हमने अपने लिए स्थान पसंद कर लिया है, वह जो गुलाब की क्यारियां हैं वह हमें बहुत पसंद आई,
हमने सोचा है वही स्थान हमारे लिए ठीक है। माताजी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, तो गुरुजी बोले, शरीर तो हम छोड़ेंगे ही, अमर तो है नहीं। फिर अन्य लोगों के उदाहरण देने लगे कि फलाने बाबाजी की समाधि वहाँ बन गई, फलाने की वहाँ।
और हम लोगों से कहने लगे कि देखो,
हमें बाहर मत ले जाना,
हमारा मन है कि हम और माताजी यहीं रहेंगे,
हमारी समाधि यहीं बनाना। हम सभी उदास हो गए, माताजी भी रोने लगी। तब गुरुजी बोले, भावुक क्यों होती हो, क्या यह सच नहीं है? माताजी बोली, पर बच्चों के सामने क्यों? गुरुजी बोले, आज नहीं तो कल, हमको जाना तो है ही। फिर उस दिन गोष्ठी आगे नहीं बढ़ी।
कुछ दिन बाद गुरुजी ने गोष्ठी में कहा कि हमने अपने दोनों के लिए जगह चुन ली है, हम दोनों के लिए दो घोंसले बनाओ।
फिर एक दिन बोले, ऋषिकेश जाओ, वहाँ जो गुरुद्वारे में दो छत्रियाँ बनी हैं, उन्हें देखकर आओ और हमारे लिए वैसी ही बना दो। एक का नाम होगा सजल श्रद्धा और दूसरी का प्रखर प्रज्ञा। इसी दौरान जयपुर से वीरेंद्र अग्रवाल जी आए, उनके सामने भी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा, गुरुजी, संगमरमर की छत्री बना दें। गुरुजी बोले, ठीक है, संगमरमर की बना दो। इस प्रकार गुरुजी ने अपने रहते ही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का निर्माण करवा दिया था।
संगमरमर का चबूतरा बना, सामने का फर्श कच्चा रखा गया और गुरुजी ने घोषणा कर दी कि हमारा संस्कार यहीं होगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम प्रखर प्रज्ञा में रहेंगे और माताजी सजल श्रद्धा में रहेंगी।
हमारी चेतना यहाँ आगामी 100 वर्षों तक रहेगी और पूरे विश्व का यह शक्ति केंद्र होगा। यहाँ से हम सबको सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का अंश देते रहेंगे। यहाँ हर कोई हमसे मिल सकेगा, अपनी बात कह सकेगा।
हम सबकी उसी प्रकार सेवा करते रहेंगे जैसे जीवित अवस्था में कर रहे हैं।
आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा संपूर्ण गायत्री परिवार की श्रद्धा का केंद्र है और परिजन यहाँ पर गुरुजी माताजी की चेतना को अनुभव भी करते हैं और उनके दर्शन भी।
जीवन के अंतिम क्षणों में गुरुजी माताजी को निर्देश दे गए थे कि उनके शरीर छोड़ने पर भी उनके किसी भी कार्य में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए।
उस समय माताजी के उस स्वरूप को देखकर हमें आज भी आश्चर्य होता है और साथ ही विश्वास भी कि वे साक्षात पार्वती ही थी, जिन्हें अपने शिव की ईश्वरता का पूर्ण एहसास था, अन्यथा साधारण माटी की महिला तो ऐसा नहीं कर सकती कि मालूम है। गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी प्रवचन दिया, सबसे मिली, जितनी भीड़ आई थी सबको भोजन करने का निर्देश दिया।
सबके भोजन कर चुकने के बाद ही गुरुजी के शरीर छोड़ने के विषय में बताया।
शाम को गुरुजी के पार्थिव शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब माताजी ने नादयोग की घंटी बजाने का निर्देश दिया। हम उनकी ओर देखते रह गए। वे बोली, गुरुजी का निर्देश है, सब कार्य यथावत चलेंगे, कोई कार्य रुकेगा नहीं। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बस स्थूल देह त्यागी है। शाम को माताजी ने सबके लिए खिचड़ी बनाने का निर्देश दिया और कहा, कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन सुबह के भी सभी क्रम यथावत चले, माताजी सबसे मिली भी।
गुरुजी के अंतिम समय के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग लालायित थे,
बड़ी तड़प थी। सो माताजी से जब उन्होंने विनय किया तो उन्होंने कहा, वे बहुत पहले से ही कहने लगे थे कि मैं गायत्री जयंती के दिन यह शरीर छोड़ दूंगा। उस दिन 4:30 बजे मैं गुरुजी को प्रणाम करके 6:30 बजे स्टेज पर पहुंच गई। मैंने भाषण भी दिया, 4 शादियां थी, बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, तिलक किया, माला पहनाई, बच्चों को खाना भी खिलाया।
प्रणाम में केवल 5 व्यक्तियों को मैंने फूल दिए और आगे मैं फूल न दे सकी। कारण, मेरा शरीर प्रणाम करा रहा था, पर मुझे मालूम था कि गुरुजी ने अपने शरीर से विदाई ले ली है। चलते समय गुरुजी ने हाथ पकड़कर अंतिम बार मुझे बस इतना ही कहा था कि मैं गायत्री परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर और केवल तुम पर छोड़े जा रहा हूँ। मैंने भी वायदा निभाने की सौगंध खाए। गुरुजी का लिखा यह गीत, जिसे माताजी ने हम सबके लिए गाया है, तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो, पर मैं तुम्हारा हूँ।
मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा, मैं खुशी के गीत गा गाकर सुनाऊंगा। यह उनके न केवल भाव थे बल्कि उनका जीवन था जो हमने देखा। श्री दिलीप कुमार दत्ता। श्री दिलीप कुमार दत्ता डॉक्टर
अमल कुमार दत्ता के छोटे भाई हैं।
डॉक्टर
दत्ता का पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव से सन 1960 से संपर्क में रहा है और आज भी मिशन के कार्यों में सक्रिय है।
बालक को जीवन दान। श्री दिलीप कुमार दत्ता डॉक्टर
दत्ता के भाई हैं, उनके पास भी गुरुजी माताजी के ढेरों संस्मरण हैं। वे बताते हैं, सन 1967 में मैं व मेरे भाई डॉक्टर
ए के
दत्ता का परिवार दोनों एक साथ देवास में रहते थे, वहीं दोनों की सर्विस थी।
गायत्री यज्ञों की श्रृंखला में गुरुदेव देवास आए और हमारे यहाँ ही ठहरे। कार्यक्रम की समाप्ति पर जाते समय गुरुजी ने कहा, दिलीप तुझे मालूम है मैं तुझे क्या देकर जा रहा हूँ। मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
उन्होंने पुनः कहा, तेरे दो बच्चों में से एक का जीवन आज ही समाप्त था।
मैं उसे जीवन देकर जा रहा हूँ। मैं अवाक रह गया,
जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुरुवर ने उसे देख लिया और विधान बदलकर मुझे कृतकृत्य कर दिया। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे जीवन में बीती हैं जब पूज्यवर ने संरक्षण प्रदान किया है। आज मेरा वह बच्चा अमेरिका में इंजीनियर है।
मेरी नौकरी, उनका आशीर्वाद।
ऐसे ही एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे दो भाई डॉक्टर हो गए हैं। गुरुजी ने पूछा, तूने क्या पढ़ाई की है? मैंने कहा, M.Com
किया है। जवाब मिला, तब तू डॉक्टर कैसे बनेगा? मैंने कहा, गुरुजी, डॉक्टर नहीं बन सकता, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा, तुझे डॉक्टर के समकक्ष बना दिया जाए तो चलेगा। मैं खुश होकर हामी भरकर घर चला गया तथा डॉक्टर के समकक्ष फैमिली प्लानिंग ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई किया। कुछ दिनों बाद मुझे पत्र मिला, लिखा था, रिग्रेट यानी नॉट सिलेक्टेड। मैं फिर गुरुजी के पास गया, कहा, गुरुजी, मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया। गुरुजी ने वह पत्र हाथ में लिया और बोले, अरे तेरा हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा, गुरुजी, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, इसमें लिखा है रिग्रेट। गुरुजी ने पुनः कहा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा तेरा। 15 दिन बाद दूसरा पत्र आया, लिखा था, यू आर सिलेक्टेड एंड पोस्टेड एट रायगढ़।
मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था, स्टेशन पर पर्चा पड़ा, रूपराम नगर कॉलोनी में गुरुजी का कार्यक्रम है।
मैं तुरंत उतरकर गुरुजी से मिलने चल दिया। गुरुजी के पास पहुंचा व बताया, गुरुजी, मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने झट से कहा, क्यों रे, तूने तो कहा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, जा ट्रेन खड़ी मिलेगी। मैं तुरंत वापस लौट गया और आश्चर्य, सचमुच ट्रेन खड़ी ही मिली।
मैं बैठा और ट्रेन चल दी, जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही थी।
ऐसे कृपालु थे पूज्यवर, उनकी सर्वज्ञता। यह उन दिनों की बात है जब शांतिकुंज में लगातार वानप्रस्थ शिविरों का आयोजन चल रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ शांतिकुंज आया।
प्रवचन के बाद हम दोनों हर की पैड़ी घूमने चले गए।
लौटकर जब वंदनिया माताजी के पास गए, तब तक गुरुदेव वानप्रस्थ संस्कार संपन्न कराकर ब्रह्मदंड वितरित करके ऊपर अपने कमरे में जा चुके थे।
माताजी ने हम दोनों को ऊपर गुरुजी से मिलने भेज दिया।
गुरुजी ने दो ब्रह्मदंड मंगाए व एक मुझे दे दिया। फिर मेरे दोस्त को देखकर बोले, तुझे ब्रह्मदंड दूं कि नहीं?
तू जब घर से आया तो तूने अपनी पत्नी को थाली फेंक कर मारी, जिससे उसकी नाक पर चोट लग गई।
अब तू ब्रह्मदंड से मारेगा? चाय में शक्कर कम थी न, ब्रह्मदंड से मारेगा तो मुझे भी पाप लगेगा। घटना बिल्कुल सत्य थी।
मेरा दोस्त सुनकर हैरान रह गया कि गुरुजी को कैसे मालूम हुआ। गुरुजी के चरणों में श्रद्धावनत होकर उसने माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने की कसम खाए।
तब गुरुदेव ने उसे भी ब्रह्मदंड प्रदान किया।
एक और संस्मरण है।
मुझे हरिद्वार आना था और उस दिन मुझे तेज बुखार था। मेरा रिजर्वेशन भी नहीं था, फिर भी गुरुजी से मिलने की उत्कंठा इतनी अधिक थी कि मैं घर न जाकर ट्रेन में ही बैठा रहा। रिजर्वेशन कराने जाने की भी मुझमें हिम्मत नहीं थी। अचानक एक कुली आया और बोला, आपको रिजर्वेशन चाहिए? मैंने कहा, हाँ, और बिना कुछ पूछे उसे टिकट और 50 रुपये दिए। वह टिकट और पैसा लेकर चला गया।
उसके जाने के बाद मन में विचार आया, यदि वह न लौटा तो क्या होगा?
जो टिकट था वह भी गया। फिर सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा।
थोड़ी ही देर में वह कुली आ गया और जिस सीट पर मैं बैठा था वह उसी सीट का रिजर्वेशन करा कर लाया था।
मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और चैन से सो गया। हरिद्वार पहुंचा, माताजी से मिला तो उन्होंने कहा, बेटा, गुरुजी के दो फोन आ गए,
तुझे ऊपर बुलाया है। मैं कुछ समझा नहीं,
मन में सोचा, मैं तो अभी आ रहा हूँ।
दो फोन पहले से कैसे आ गए?
ऊपर पहुंचा, देखते ही गुरुजी ने कहा, रिजर्वेशन मिल गया
और बुखार भी उतर गया ना। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कहाँ पर थे? पर फिर तुरंत ही मन में सोचा, मैं क्या पूछ रहा हूँ,
वे तो सर्वज्ञ हैं, हो न हो उस सहृदय व्यक्ति के रूप में गुरुदेव ही तो पहुंचे थे और तुरंत श्रद्धावनत हो उनके चरण पकड़ लिए।
बहुत से संस्मरण हैं, पूरा जीवन क्या अनेकों जन्म उनका ऋण चुकाने में लगा दे तो भी संभव नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि न जाने किन जन्मों के पुण्य होंगे जो गुरुदेव हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं।
3. गुरु सत्ता के साथ मनोविनोद के क्षण। गुरुजी काम करने के साथ साथ मनोरंजन भी करते रहते थे।
कितना भी काम का दबाव हो वे वातावरण को कभी बोझिल नहीं होने देते थे।
सबके साथ हंसते हंसाते रहते थे।
उनके हास्य में भी कोई ना कोई रहस्य या शिक्षण अवश्य छिपा रहता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी कोई भी बात व्यर्थ नहीं है।
हंसते हंसाते भी वे कुछ न कुछ सिखा देते थे।
पढ़िए उनकी विनोद प्रियता से संबंधित कुछ प्रसंग। मूछों वाला मुन्ना।
श्री वीरेश्व उपाध्याय जी एवं श्रीमती कृष्णा उपाध्याय।
श्री गिरजा सहाय व्यास चार आत्मदानियों में से एक हैं।
उनके छोटे पुत्र मथुरा आए, तब बहुत छोटे थे। सभी उसे मुन्ना कहते थे। उस बालक को गुरुवर की गोद में खेलने का बहुत सौभाग्य मिला था। समय के साथ वे बिलासपुर चले गए, बड़े होकर इंजीनियर बन गए। एक बार वे शांतिकुंज आए, पूज्यवर से मिलने के क्रम में उन्होंने बताया कि मैं गिरजा सहाय व्यास का लड़का हूँ। गुरुजी उस समय लेखन कर रहे थे।
जब उन्होंने सुना कि गिरजा सहाय का पुत्र है तो कलम रोककर ऊपर से नीचे तक देखा,
फिर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मुन्ना। गुरुजी को झट से चुहल सूझी और जोर से बोले, वीरेश्व
इधर आना। और वे पैर के ऊपर पैर रख बच्चों से मनोरंजन के मूड में आ गए। वह कहा, जल्दी आ, देख तुझे मूछों वाला मुन्ना दिखाता हूँ। पहली आवाज में ही मैं लेखन छोड़कर गुरुवर के सामने तक पहुँच चुका था।
उसी वाक्य को दोहराते हुए उन्होंने फिर कहा, देख तुझे मूछों वाला मुन्ना दिखाता हूँ, देख।
यह वही है न जो हमारे साथ इतना सा दोनों हाथ से छोटेपन का इशारा करते हुए खेला करता था। माजरा समझकर मैं भी हंसने लगा।
गुरुजी ने बालक से हाल चाल पूछा, बहुत स्नेह दुलार दिया एवं विदा किया। विश्वामित्र -2 में चले जाओ। एक दिन गुरुजी के पास एक सज्जन आए और बोले, गुरुजी मुझे मुक्ति चाहिए। गुरुजी उससे दो बार बोले, मुक्ति चाहिए, तुझे मुक्ति चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, जा विश्वामित्र -2 में चला जा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों को सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि मुक्ति जीजी उन दिनों विश्वामित्र -2 में ही रहती थी। वह सज्जन नीचे उतरे और विश्वामित्र -2 में पहुंचे। मुक्ति जीजी सामने ही बैठी थी। उन्होंने पूछा, बताइए भाई साहब, किससे मिलना है? वे सज्जन बोले, गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है। मुक्ति जीजी ने पूछा, क्या काम है? वे बोले, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति जीजी बोली, मेरा ही नाम मुक्ति है, कहिए। सुनकर वे झेप गए और बोले, मेरा मतलब
उस मुक्ति से था। सुनकर मुक्ति जीजी को भी हंसी आ गई और गुरुजी ने आपसे मजाक किया है, कहकर उन्होंने उन्हें विदा किया।
जब मुक्ति जीजी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी उनसे बोले, आज एक व्यक्ति मुझसे मुक्ति मांगने आया था,
मैंने उसे तेरे पास भेज दिया।
उसे मुक्ति मिली कि नहीं? फिर तो हम सब खूब हंसे।
अच्छा तो हम मूंछ मुड़ा लेते हैं।
डॉक्टर मंजू चोपदार 1971 में दीक्षा ली, 1990 में पूर्ण रूप से शांतिकुंज आ गई। अपने बुजुर्गों के मुंह से मैंने सुन रखा था कि व्यक्ति जिस किसी भी प्रतिभा का धनी हो, उसे उसकी आवश्यक सामग्री सदैव अपने साथ रखनी चाहिए।
यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
चूंकि मैं स्त्रीरोग विशेषज्ञ थी, अतः प्रसूति के समय हेतु आवश्यक औजार अपने साथ बैग में ही रखने लगी। इसी बीच में हरिद्वार आई। बैग हमेशा मेरे साथ ही रहता था। मैं ऊपर खाना खा रही थी, तभी माताजी गुरुजी के पास खबर पहुंची कि ब्रह्मवर्चस के श्री भास्कर तिवारी जी की पत्नी को प्रसव का दर्द उठा है,
अतः शीघ्र अस्पताल जाने की व्यवस्था करनी है।
मैं डॉक्टर हूँ।
यह बहुत लोगों को मालूम था। किसी ने मुझे बुलाया और माताजी के पास भेजा।
उन्होंने पूछा, मैंने कहा, माताजी मेरे पास सब सामान है, कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो माताजी बहुत खुश हुई व बहुत आशीर्वाद देकर ब्रह्मवर्चस भेजा।
शीघ्रता के कारण मेरे लिए कार निकलवाई गई, जिसे आदरणीय डॉक्टर
प्रणव भाई साहब ने स्वयं चलाया। हम ब्रह्मवर्चस पहुँचे, सुखपूर्वक प्रसव करवाया, लड़का हुआ, जिसका नाम बाद में शरद रखा गया। शांतिकुंज वापस लौटकर वंदनिया माताजी को रिपोर्ट दी। माताजी ने खूब पीठ थपथपाए।
उस समय गुरुजी व माताजी दोनों धूप में छत पर बैठे थे।
माताजी ने जैसे ही सुना लड़का हुआ है, खुशी से बोल पड़ी, मैं जीत गई। पता नहीं गुरुजी एवं माताजी की परस्पर क्या चर्चा हुई थी,
पर उसमें माताजी का कथन सत्य हुआ था।
अतः गुरुजी ने कहा, अच्छा
हम हार गए
तो चलो मूंछ मुड़ा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुदेव क्लीन शेव रहा करते थे, अतः वातावरण ठहाकों से गूंज उठा। पुत्र जन्म की खुशी अनंत गुनी हो गई। उसके मुंह से धुआं निकले। श्रीमती श्रीपर्णा दत्ता, शांतिकुंज।
एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी चोरी करते हैं,
यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती कि पाप करते ही उसका पता लग जाता तो सारे पाप नष्ट हो जाते। गुरुजी बोले, तू बड़ी होशियार है। अब जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो तेरी बात कहूंगा कि जब कोई झूठ बोले तो उसके मुंह से धुआं निकले और चोरी करे तो उसके हाथ कट जाएं। और जोर से हंस दिए। वहां उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे।
आज उसे डाक खाने दो।
श्री राम खिलावन अग्रवाल एवं श्रीमती विमला अग्रवाल 1959 में गुरुदेव के संपर्क में आए।
1963 में दीक्षा ली और 1985 में पूर्ण रूप से शांति कुंज आ गए। वर्तमान में ब्रह्मवर्चस में कार्यरत हैं।
सन 1977 दिसंबर की बात है। गुरुजी डाक स्वयं ही देखते थे। उन दिनों पोस्टमास्टर का काम श्री अभिनेश जी देखते थे। गुरुजी को डाक के विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी। उन्होंने पास बैठे कार्यकर्ता से कहा, जा अभिनेश को बुला ला। कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस में गया तो पता चला कि वह हरिद्वार के पोस्ट ऑफिस में गया है। उसने गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी अभिनेश तो डाक खाने गया है। गुरुजी अपने काम में तल्लीन थे सो पूरे शब्द ठीक से नहीं सुने और पूछा, क्या कहा? कार्यकर्ता ने पुनः अपनी बात दोहराई, गुरुजी अभिनेश तो डाक खाने गया है। उसका बोलने का ढंग कुछ अलग सा था, सो गुरुजी को मजाक सूझी। बोले, अच्छा डाक खाने गया है। फिर कुछ देर बाद पुनः बोले, अच्छा अच्छा
डाक खाने गया है तो अच्छा है, आज उसे डाक खाने दो, हमारा खाना बचेगा। और पूरा वातावरण ठहाकों से गूंज पड़ा।
ऐसे विनोदी थे पूज्यवर।
इतने बड़े गुरुजी यज्ञ करा रहे हैं।
श्री शिवप्रसाद मिश्रा जी 1957 में अखंड ज्योति के पाठक बने, 1965 में दीक्षा ली और 1972 में पूर्ण रूप से शांति कुंज आ गए। यह गायत्री तपोभूमि मथुरा का प्रसंग है।
पूज्य गुरुदेव के पास मिलने वालों का तांता लगा ही रहता था।
उस समय 24 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी यज्ञ संपन्न करा रहे थे। पूज्यवर उठने ही वाले थे कि एक आगंतुक आया व गुरुजी से ही पूछने लगा, पम श्रीराम शर्मा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गुरुदेव को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, अरे अरे
देख नहीं रहे हो, इतने बड़े गुरुजी यज्ञ करा रहे हैं और उसे श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी की ओर भेज दिया।
चूंकि वह अनजान था, श्री शुक्ला जी लंबी दाढ़ी रखते थे,
सो उसने भी गुरुजी की बात पर अविश्वास नहीं किया।
उनकी बात को सत्य समझकर वह श्री शुक्ला जी के पास गया और साष्टांग प्रणाम किया। उसके प्रणाम करते ही श्री शुक्ला जी हड़बड़ा गए और बोले, हैं
यह क्या कर रहे हो भाई?
आप प्रणाम गुरुदेव का करिए, वे वहाँ बैठे हैं। तब उन सज्जन ने कहा, मैं तो उन्हीं से पूछकर आया हूँ।
उन्होंने ही आपके पास भेजा है, अब तो उनसे कुछ कहते नहीं बना। समझ गए, गुरुदेव ने मजाक किया है।
अतः उनसे पुनः बोले, भाई मेरी बात का विश्वास करें, वे ही पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं।
उन्होंने आपसे विनोद किया है,
आप जाइए उनके ही चरण पकड़िए। जब वह लौटकर आया तो पूज्य गुरुदेव ने मंद मंद मुस्कराते हुए पूछा, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य नहीं मिले क्या? क्यों हमारा मजाक बनाते हैं प्रभु?
कहते हुए वह सज्जन उनके चरणों में गिर पड़े।
चरण मत छोड़ना। ऐसे ही एक दिन श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी और अन्य दो चार कार्यकर्ता पूज्य गुरुदेव के साथ कुर्सियों पर बैठे थे। इतने में एक सज्जन वहां आए, वह गुरुजी को पहचानते नहीं थे। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी की लंबी दाढ़ी और मूंछ देखकर उन्होंने सोचा, यही गुरुजी होंगे, और उनके चरण पकड़कर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गए। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी हकपकाकर खड़े हो गए और बोले, अरे अरे
क्या करते हो भाई, मैं गुरुजी नहीं हूँ।
इधर गुरुजी उसे बोले, पकड़े रहो पकड़े रहो, चरण मत छोड़ना जब तक गुरुजी आशीर्वाद न दे दें। उनकी बात सुनकर उन सज्जन ने और भी कसकर शुक्ला जी के चरण पकड़ लिए। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी बोले, अरे भाई सच मानो, मैं गुरुजी नहीं हूँ। और गुरुजी की ओर इशारा करते हुए बोले, गुरुजी इधर हैं। पर गुरुजी ने फिर से कह दिया, चरण मत छोड़ना, गुरुजी सहजता से आशीर्वाद नहीं देते, और हंस दिए। वह सज्जन कुछ देर शुक्ला जी के पैर पकड़कर लेटे रहे।
इधर सभी लोगों को हंसी आ गई।
सबको हंसते देख उन सज्जन को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है और वह उठकर खड़े हो गए। फिर ना जाने क्या सोचा और उन्होंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी को बैठने दो। उन दिनों पूज्यवर सारे देश में गायत्री एवं यज्ञ के प्रचार प्रसार हेतु जाते थे। वे सदैव ही तीसरे दर्जे में सफर करते। एक बार श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी व पूज्य गुरुदेव ट्रेन में चढ़े। उस दिन भारी भीड़ थी सो बैठने की जगह नहीं मिली। दोनों सामान को एक किनारे जमा कर थोड़ी देर खड़े रहे। कुछ देर बाद गुरुदेव ने रमेश चंद्र शुक्ला जी की ओर इशारा करते हुए ट्रेन में एक व्यक्ति से कहा, थोड़ी जगह हमारे गुरुजी को बैठने के लिए दे दीजिए। श्री शुक्ला जी कुछ बोलते इसके पूर्व ही गुरुदेव ने उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए चुप रहने का निर्देश दे दिया। बेचारे क्या करते, चुप रहे। श्री शुक्ला जी लंबी दाढ़ी एवं लंबे बाल रखते थे, जिससे वे संत जैसे दिखाई पड़ते थे। अतः उन्होंने उन्हें सचमुच ही गुरुजी मानकर थोड़ी जगह बना दी। गुरुदेव ने उन्हें पुनः आंख दिखाकर बैठने का निर्देश दे दिया।
मरता क्या न करता वे चुपचाप बैठ गए। वे बैठ तो गए पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वे बैठे और गुरुदेव खड़े रहें।
थोड़ी देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, भाई इन्हें भी थोड़ी जगह दे दो। उन्हीं महाशय ने पुनः थोड़ी जगह बनाई और कहा, आप भी बैठ जाइए। अब गुरुजी भी बैठ गए।
ट्रेन से उतरने पर जब श्री शुक्ला जी ने फिर से ऐसा न करने की बात कही तो उन्होंने कहा, तुझे बैठाया तो बाद में मुझे भी बैठने को मिल गया ना,
अन्यथा दोनों ही खड़े रहते, और ठहाका मारकर हंसने लगे।
अब शुक्ला जी भी हंसने लगे और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। मजाक में भी भविष्य की ओर इशारा।
श्री केसरी कपिल जी, शांति कुंज,
मथुरा की बात है।
श्री शरण जी सपरिवार मथुरा पहुंचे।
रास्ते में उनका सामान चोरी हो गया।
उनकी पत्नी इस कारण बहुत दुखी हो रही थी।
वे गुरुजी से बोली, गुरुजी, हमने कौन सा पाप किया जो हमारा सारा सामान चोरी हो गया। इस पर गुरुजी ने पहले उन्हें थोड़ा समझाया, फिर मजाक करते हुए कहने लगे, राम के जमाने में तो रावण सीता जी को भी उठाकर ले गया था, तुम्हारा तो सामान ही गायब हुआ है। फिर मेरी ओर इशारा करते हुए कहने लगे, परसों ये लखनऊ जाने वाला है, इसका कोई बिस्तर ही उठाकर चलता बनेगा तो यह क्या कहेगा। उस समय तो हम सबको हंसी आ गई और वातावरण हल्का हो गया। पर मजे की बात यह हुई कि वास्तव में उस यात्रा के दौरान लखनऊ स्टेशन पर से कोई मेरा बिस्तर लेकर चलता बना। कौवा काना काट ले जाए।
श्रीमती मुक्ति शर्मा, शांति कुंज। एक दिन जब मैं माताजी को प्रणाम करने गई तो जैसे ही मैंने माताजी को प्रणाम किया, माताजी हंस दी। मैंने माताजी से हंसने का कारण पूछा तो बोली, रात को गुरुजी मजाक कर रहे थे।
उन्होंने अखबार में कोई खबर पढ़ी है कि शहर में कोई ऐसा कौवा आया है जो महिलाओं के कान काटकर जेवर ले जाता है। फिर मुझे पूछने लगे कि हमारे यहाँ कौन कान में बाली पहनती है। मैंने कहा, और का तो मुझे ख्याल नहीं, पर मुक्ति पहनती है। इस पर गुरुजी बोले, हाँ, वह तो रोज ब्रह्मवर्चस से आना जाना भी करती है।
तुम उसे समझा देना कि ध्यान रखे, देखना कहीं कौवा कान न काट ले जाए, और हंसने लगे।
सो मुझे तुझे देखकर उनकी बात याद आ गई। मुझे भी माताजी की बात सुनकर हंसी आ गई और बोली, गुरुजी भी मजाक करते रहते हैं।
माताजी भी हंसने लगी।
रात को मैंने इनसे माताजी की बात बताई तो इन्होंने कहा, तुमको तो हर बात मजाक लगती है, गुरुजी के मजाक में भी रहस्य छिपा रहता है, तुम अपनी ये बाली वाली उतार कर रख दो। मैंने बालियां उतार कर रख दी। सुबह जब माताजी को प्रणाम करने गई तो माताजी बोली, लाली, बाली कहाँ गई। मैंने कहा, माताजी आपने ही तो कल कहा था कि कौवा कान काट ले जाता है। मैंने इनसे सब बात बताई तो ये बोले कि गुरुजी की हर बात में कोई न कोई रहस्य रहता है, सो तुम तो इन्हें उतार कर रख ही दो।
इसलिए मैंने उतार दी।
माताजी बोली, कहने दे उसे, कहीं कौवा भी कान काट ले जाता है।
ले भी जाता होगा तो मैंने तुझे संरक्षण दिया।
तू तो अपनी बाली पहन, नंगे कान अच्छे नहीं लग रहे।
आज ही पहन लेना। मैंने कहा, ठीक है माताजी। कमरे में आकर मैंने अपनी बालियां पहन ली। इन्होंने देखा तो कहा कि तुमने फिर लटका ली।
मैंने कहा, माताजी ने संरक्षण दे दिया है, लेकिन वास्तव में गुरुजी की बात व्यर्थ नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरी ससुराल से पत्र आया जिसमें लिखा था कि एक रात घर में चोर घुस आया था। अम्मा ने उसे देख लिया और तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अम्मा के कान का एक बूंदा खींच ले गया जिससे अम्मा का कान कट गया।
पत्र पढ़कर इन्होंने कहा कि देखा,
तुम्हें तो माताजी ने संरक्षण दे दिया, पर घटना तो घटी ही, यहाँ नहीं तो घर में। गुरुजी मजाक मजाक में भी कुछ न कुछ संकेत करते रहते हैं।
कौए वाली खबर भी सच थी।
उसने शहर में आतंक मचा रखा था।
प्रायः रोज ही कोई न कोई घटना घटती थी, सो पुलिस उसके पीछे लगी थी।
एक दिन फिर अखबार में छपा कि कान काटने वाला कौवा पकड़ा गया और उसके कोटे में से बहुत से कान के जेवर मिले।
मिठाई की दुकान तो खूब चलेगी। श्री मिठाईलाल जी चौधरी, ओरिजोत, बस्ती ओ प्र। एक बार 1981 में जब मैं शांतिकुंज आया और पूज्यवर को प्रणाम करने गया तो मुझे देखते ही गुरुजी मजाक करते हुए बोले, आहा, मिठाईलाल जी भी आ गए, अब तो इनके आगे पीछे सब बच्चे घूमते रहेंगे, इनकी मिठाई की दुकान तो खूब चलेगी। वहाँ उपस्थित सब लोग हंसने लगे।
मुझे भी हंसी आ गई,
लेकिन गुरुजी के यह शब्द तो वरदान थे, यह मैं नहीं जानता था। हमारे एक मित्र की मिठाई की दुकान थी
जो उन दिनों चलती नहीं थी, पर उसके बाद जब भी मैं उनकी दुकान पर जाकर बैठ जाता तो थोड़ी सी ही देर में उनकी खूब बिक्री हो जाती। आज उनकी वह दुकान खूब तरक्की कर रही है।
गायत्री माँ चाय पिलाती थी। डॉक्टर कमल कुमार दत्ता, शांति कुंज। सतीश भाई साहब की शादी थी। गुरुजी का एक भतीजा जिसका प्यार का नाम सत्तो है, अपने जीजा जी की खूब तारीफ कर रहा था। जब कुछ ज्यादा ही तारीफ होने लगी तो गुरुजी उसका मजा लेते हुए बोले, सत्तो,
तुमने अपने जीजा जी की तारीफ तो बहुत की, बस एक ही बात की कमी रह गई कि तुमने यह नहीं कहा कि हमारे जीजा जी को गायत्री माँ चाय पिलाती थी। गुरुजी की बात सुनकर सब लोग जोर से हंस दिए।
भूत तुझे उठा ले जाएगा। एक बार गुरुजी हमारे यहाँ आए हुए थे, मुझसे बोले, डॉक्टर तुझे कार चलाना नहीं आता। मैंने कहा, गुरुजी मैं सीख रहा हूँ। मेरा मन था कि जब तक आप रहें कार में ही चलाऊं, पर अभी ठीक से सीख नहीं पाया। गुरुजी बोले, तू चला। मैंने ड्राइवर को पीछे भेज दिया।
गुरुजी बतलाते रहे कार कैसे बचा बचा कर चलाएं और हम अमई पहुंच गए।
रमन जी की पत्नी निर्मला जीजी भी हमारे साथ थी। हम और गुरुजी आगे बैठे थे। इतने में पीछे से ड्राइवर बोला, गुरुजी इस दाईं तरफ की बिल्डिंग में भूत रहता है। गुरुजी बोले, निम्मो यह ड्राइवर कह रहा है यहाँ भूत रहता है, संभल कर बैठ नहीं तो भूत तुझे उठा ले जाएगा। वह बोली, गुरुजी आप बैठे हैं तो डर क्या। गुरुजी बोले, गुरुजी तो सामने बैठे हैं, पीछे से तुझे उठा ले गया तो मैं क्या करूंगा। और हम सब हंसने लगे। गुरुजी का बच्चा। गुरुजी मेरा छोटा बेटा सिद्धार्थ 3-4 वर्ष का था।
उन दिनों हम लोग अशोकनगर में रहते थे।
गुरुजी अशोकनगर आए हुए थे।
लोगों ने उन्हें बहुत सी फूलमालाएं पहनाई थी।
गुरुजी फूलमाला रखकर अपने स्थान से उठे तो सिद्धार्थ ने वह सब अपने गले में पहन ली। इतने में पंडित लीलापत शर्मा जी वहां से निकले। वह बच्चे से हिले मिले हुए थे। सिद्धार्थ ने उन्हें बुलाया और कहा, मुझे प्रणाम करो, मैं गुरुजी हूँ। लीलापत शर्मा जी भी उसे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम कहते हुए गोद में उठाकर गुरुजी के पास ले गए और बोले, यह कहता है मैं गुरुजी हूँ। गुरुजी ने उसे गोद में उठाया और बोले, ठीक तो कहता है, यह अमल कुमार का बेटा। शेर का बच्चा शेर, बकरी का बच्चा बकरी, गुरुजी का बच्चा गुरुजी, और ठहाका लगाकर हंस दिए। हम सब भी जो वहां खड़े थे हंसने लगे।
पर उनकी इस बात के पीछे गहरी प्रेरणा भी छिपी थी, जिसे हम सब ने हृदयंगम भी किया। वे अपने प्रवचनों में भी अक्सर कहते थे, बेटा
शेर का बच्चा शेर होता है, तुम शेर के बच्चे बनना, बकरी के नहीं, कुहनी मारो। श्रीमती विमला अग्रवाल, ब्रह्मवर्चस। अक्षय तृतीया का दिन था। सरोज अग्रवाल का विवाह दिन था व मेरे 1.25 लाख अनुष्ठान की पूर्णाहुति थी। तारीख से हमारा भी विवाह दिन था, सो हम दोनों दंपति एक साथ वंदनीय माताजी के कमरे में दाखिल हुए। माताजी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आज तो सब इकट्ठे चले आ रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा, माताजी सरोज का विवाह दिन है। सरोज ने कहा, माताजी आज भाभी का भी 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा हुआ है। सुनकर माताजी ने कहा, लगता है दिन गिनकर अनुष्ठान शुरू किया था। यह तेरी भाभी है कि तू इसकी भाभी है। मैंने कहा, यह मेरी नंद है। तब माताजी ने पुनः चुटकी ली, नंद भाभी हो तो कुहनी मारो, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी बात सुनकर हम सबको भी हंसी आ गई।
रोटियां तो तुम्हारे जैसे ही फूल रही हैं।
प्रणाम के समापन व लेखन के पश्चात गुरुजी चौके में आकर थोड़ी देर टहलते थे, साथ साथ सबके कार्यों का निरीक्षण करते, आवश्यक निर्देश देते व हंसी मजाक करते हुए हंसाते भी रहते।
कभी कभी कोई लड़की किसी से गुस्सा हो जाती तो उस समय तो गुरुजी माताजी उसे समझा देते,
किंतु बाद में गुरुजी सबका मनोरंजन करते हुए कहते, छोरियो रोटियां तो तुम्हारे जैसे ही फूल रही हैं। सबको हंसी आ जाती, जो गुस्सा होती वह भी समझ जाती और गुस्सा भूलकर सबके साथ हंसने लगती। जारी रखें अन्य संस्मरण।